नमस्कार। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रहे हैं। वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा जी की एक पुस्तक है, परमात्मा की सर्वोत्कृष्ट कृति नारी, और उसी के एक अध्याय जिसका शीर्षक है नीति प्रतिष्ठा का आग्रह भी तो उभरे, इस पर हम आज थोड़ी गहराई से चर्चा करेंगे।
जी, ये अध्याय वाकई बहुत विचारणीय है।
हाँ, इसमें वंदनीय माता जी एक दिलचस्प बात कह रही हैं। वो मानती हैं कि बाहरी अन्याय या जुल्म वो तभी टिकता है जब उसे कहीं ना कहीं अंदर से मतलब स्वीकृति मिलती है।
बिल्कुल, और यहीं पर नीति प्रतिष्ठा का जो विचार है वो सामने आता है।
हाँ, ये नीति प्रतिष्ठा, इसका क्या अर्थ है यहाँ?
देखिए, वंदनीय माता जी के अनुसार नीति प्रतिष्ठा का मतलब है अपने नैतिक मूल्यों पर, अपनी जो सही बात है उस पर मजबूती से टिके रहना।
हाँ।
उसका आग्रह करना, उसकी गरिमा को बनाए रखना।
अच्छा, तो जैसे वंदनीय माता जी ने पुस्तक में लिखा है कि नारी के पिछड़ेपन में पुरुष की भूमिका, ये तो वो मानती हैं।
हाँ, वो मानती हैं।
लेकिन साथ ही वो ये भी कहती हैं कि अन्याय असल में वहीं टिकता है जहां दीनता होती है, या कह लें कि कमजोरी होती है।
सही, पुस्तक में एक पंक्ति है, दीनता की दुर्बलता जहां होती है वहीं अनौचित्य का आतंक ठहरता और परिपुष्ट होता है। ये बहुत मार्मिक बात है।
हाँ, और ये सोचना कि इंसान बाहरी दबाव से तब तक झुकता ही नहीं जब तक वो अंदर से हार ना मान ले, ये तो काफी काफी गहरा विचार है।
जी हाँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। वंदनीय माता जी का कहना है कि मनुष्य की बनावट ही कुछ ऐसी है कि बिना आत्मस्वीकार के सिर्फ बाहर का दबाव उसे झुका नहीं सकता।
अच्छा
जी, अनीति के सामने सिर न झुकाने का जो संकल्प होता है ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। दमन हो सकता है, शरीर को कष्ट दे, तोड़ दे शायद, पर आत्मा को झुकाना वो बहुत मुश्किल है। उनके ही शब्दों में कहे तो, अनीति के आगे सिर न झुकाया जाए तो दमन का दबाव तोड़ भर सकता है, झुका सकने की उसमें सामर्थ्य नहीं है।
तो फिर झुकाव आता कहाँ से है?
झुकाव आता है अंदरूनी कमजोरी से, जिसे वो मौलिक दुर्बलता कहती हैं। मतलब जब व्यक्ति अंदर से अनीति के साथ एक तरह का समझौता कर लेता है।
लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, क्या ये जो पीड़ित पक्ष है, जैसे इस संदर्भ में नारी, क्या उस पर ये एक तरह का दोहरा बोझ नहीं डालता कि एक तो बाहरी अन्याय सहें और फिर उसका सामना करने के लिए ये अंदरूनी मजबूती भी खुद ही पैदा करे?
ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और वंदनीय माता जी इस पर बात करती हैं। देखिए, वो ये नहीं कह रही कि बाहरी अन्यायपूर्ण परंपराएं ठीक हैं। वो जोर देती हैं कि उन्हें बदलना चाहिए।
हाँ, वो तो बदलना ही चाहिए।
बिल्कुल, लेकिन वो साथ में ये भी कहती हैं कि जो पीड़ित पक्ष है उसे भी अपने अंदर न्याय के प्रति एक दृढ़ता जगानी होगी, एक क्या कहें, न्याय की पक्षधर प्रखरता।
अच्छा।
और वो स्नेह या प्रेम में समर्पण करने और डर के मारे हार मान लेने, इन दोनों में साफ फर्क करती हैं। एक साहसिक शालीनता है और दूसरी जो है वो भयभीत कातरता है, दोनों एक चीज नहीं है।
ये फर्क महत्वपूर्ण है।
बहुत महत्वपूर्ण। उनका आग्रह यही है कि जो अन्यायपूर्ण दबाव है उनका मुकाबला करने के लिए अंदरूनी शक्ति जुटानी होगी।
तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ बाहरी हालात के बदलने का इंतजार करते रहना काफी नहीं है, नारी को भी अपनी जो मानवीय गरिमा है उसकी रक्षा में एक सक्रिय भूमिका निभानी पड़ेगी।
हाँ,
और वो दीनता छोड़नी पड़ेगी जो अन्याय को चुपचाप स्वीकार कर लेती है।
एकदम सही कहा आपने। वंदनीय माता जी का यही संदेश है। वो कहती हैं कि नारी को अपनी तरफ से अनीति को मान्यता देने वाली दीनता का परित्याग कर ही देना चाहिए, अब चाहे बाहरी आतंक या दबाव कम हो या ना हो, ये अंदरूनी बदलाव तो जरूरी है।
अच्छा।
और जब एक पक्ष, चाहे वो कितना भी पीड़ित क्यों ना लगे, वो न्याय और नीति पर दृढ़ हो जाता है, तो उसकी ये जो सुदृढ़ न्याय निष्ठा है ना,
हाँ,
वो दूसरे पक्ष को भी, मतलब जो अन्याय कर रहा है उसे भी सोचने और बदलने पर मजबूर कर सकती है।
अच्छा, तो ये एक दिलचस्प समीकरण बन रहा है। मतलब एक पक्ष की नैतिक मजबूती दूसरे पक्ष के व्यवहार को भी प्रभावित कर सकती है।
जी हाँ, बिल्कुल। और असल में यही इस अध्याय का सार है, उसका निचोड़ है। नीति प्रतिष्ठा का आग्रह जितना मजबूत होगा, समाज से जो अन्याय है, जो अवांछनीयताएं हैं, वो उतनी ही तेजी से दूर होगी।
तो ये सिर्फ बाहरी लड़ाई नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक आंतरिक क्रांति भी है, साथ साथ चलती है।
तो अगर हम इसे समेटें तो इस अध्याय से ये समझ में आता है कि सामाजिक बदलाव या अन्याय का खत्म होना ये एक दो तरफा प्रक्रिया है।
हाँ।
एक तरफ बाहरी अन्यायपूर्ण ढांचे हैं
परंपराएं हैं, उन्हें चुनौती देना है, और दूसरी तरफ व्यक्ति के अंदर, खासकर उनके अंदर जिन्हें अन्याय झेलना पड़ रहा है, नैतिक साहस जगाना है
और अन्याय का प्रतिरोध करने की वो अंदरूनी शक्ति, उसका विकास भी उतना ही बल्कि शायद ज्यादा जरूरी है।
बिल्कुल। तो ये विचार तो हमें सोचने पर मजबूर करता है
जी,
कि जीवन के और कौन से ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं, सामाजिक हों या व्यक्तिगत हों, जहां ये सिद्धांत लागू होता है।
कहां कहां हमारी अपनी जो आंतरिक दृढ़ता है, हमारा जो नैतिक आग्रह है, वो बाहरी नकारात्मक शक्तियों को या मुश्किल परिस्थितियों को बदलने की ताकत रखता है।
हाँ, ये सवाल ये अपने आप में गहरी खोज का विषय बन जाता है।
निश्चित रूप से।